نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله اسلام اے ٹو زی میں عبادات کا ٹاپک چل رہا ہے اور عبادات کی روح یا کہہ لیجئے کہ وہ عبادت جو دن میں کم از کم 5 دفعہ ایک ایمان والے پر فرض ہے اس کو نماز کہتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے. حقیقت ہے کہ یہ لفظ کہنا کہ نماز کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بچپن سے آج تک جو لفظ شاید دین کے نام پر ہم نے سب سے زیادہ سنا وہ نماز ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ نماز سے پہلے اگر ہم نے کلمہ یا توحید کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کو بھی اتنا ہی توجہ دی ہوتی تو آج ہمارے ارد گرد اتنا شرک نہ ہوتا. بات کو کیسے واضح کروں گی کہ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں چھوڑتے لیکن توحید اور سنت دونوں پہ عمل نہیں ہے. بات سمجھ؟ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وہ مقام اور وہ چیزیں کہ جس کو واقعی دین میں ایک بنیاد کی حیثیت تھی، اس سے بھی زیادہ لوگ نماز کی بات کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس نماز کی روح کو سمجھیں. نماز کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں چند تعریفیں. نمبر ایک، نماز نور ہے. صحیح مسلم 534. نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں. مسلم 1093، ترمذی 388. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. نسائی 3391 اور 3392. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. نسائی 468. اور نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. بخاری 659. نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھتی ہے. صحیح ترغیب 358 اور 288. اور نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا. صحیح ترغیب 361. تو یہ تو تھی چند احادیث جو نماز کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں. سوال ہے کہ نماز ہے کیا؟ اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ دہر کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، حل اتال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا اس انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک مقصد دیا. انسان کو نماز کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے. رازق اللہ ہے، بندہ مرزوق ہے. مالک اللہ ہے اور مملوک بندہ ہے. اور خالق اور مخلوق، رازق اور مرزوق، مالک اور مملوک کے بیچ میں کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ نماز اس کا عملی اظہار ہے. کہاں ایک مٹی کا ذرہ زمین میں چلتا پھرتا اور ایک اتنی بڑی ہستی کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، پھر اپنی پیشانی کو جھکا دے، پھر سجدے میں گر جائے. اصل میں نماز بندگی کا سبق دیتی ہے. واقم الصلاۃ لذکری سورۃ طٰہٰ 14 میں آتا ہے، اور تم میری یاد کے لیے نماز ادا کرو. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے جس نے اپنے اور ہمارے درمیان روحانی رابطہ مقرر کیا. کہہ لیجئے کہ نماز روحانی رابطہ ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں. اس میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو روح کا رابطہ ہے. آپ دیکھیے، ایک شخص اکیلا پہاڑ کی کسی چوٹی پر ہے، کسی جنگل میں ہے، دریاؤں کے کنارے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو کیا، قبلہ رخ کھڑا ہوا اور اسی رب کے سکھائے ہوئے طریقے پہ کھڑا، رکوع اور قیام اور باقی کام کرتے کرتے اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دے، اس کو اگر نماز کہتے ہیں، ذرا سوچیے اس وقت تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا بندے کا ایسے وقت پہ نماز پڑھنا. وہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سجدے اور اونٹوں کی اور گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے سجدے، جہاد کے میدانوں میں نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام. تو آپ کہہ لیجئے، ایک اور کوڈ ورڈ لکھ لیجئے کہ نماز کے اوقات ملاقات کے اوقات ہیں. اللہ سے ملاقات کا طریقہ نماز، اور انسان اس کا انتظار کرتا ہے شوق سے، لگن سے، حرص سے، لذت اور اس کے قرب میں وقت گزارنے کی تمنا امید باندھ دیتی ہے. अज़ान मोमिन के लिए खुशी का पैगाम होती है, और इसीलिए तो आप देखिए कि अज़ान सुनते ही दिल से दुआ निकल जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसको अल्लाह से प्यार होगा, नमाज़ उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और जब नमाज़ में एक ख़ास पोस्चर के साथ इंसान खड़ा होता है तो अल्लाह को प्यारा लगता है। आप देखिए नमाज़ में सारी पोजीशंस हैं, लेटने की नहीं है, सोने की नहीं है, खड़े भी हैं, रुकू भी है, झुकते हैं। और अगर आप मखलूकात पे गौर करें ना, तो हर मखलूक मुख्तलिफ एंगल पे, कुछ खड़े हैं बिल्कुल पहाड़ों की तरह, घोड़ों की तरह देखिए तो रुकू है, और अगर आप छोटे जो बिल्ली और इस तरह के छोटे जानवर हैं तो वो सजदे की हालत में, कि उनका मुंह बिल्कुल उनके पाँव के साथ है। गोया कि नमाज बंदे को इस फीलिंग में लेकर आती है वो अशरफुल मखलूकात, लेकिन अल्लाह के आगे हर पोजीशन तैयार करने को तैयार है, और शुरू में खड़ा है और फिर बातें करता है और फिर रुकू में आजजी है, और आखिर तो जिसको कहते हैं कि नाक की लकीरें निकालने लग जाता है बंदा सजदे में, कि मालिक अब तो मेरे से तेरे सामने खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इंसान को उसके गुनाह जो हैं वो अल्लाह के आगे इस तरह तोड़ के रख देते हैं। इब्ने मसूद ने फरमाया, रिवायत है यानी अल्लाह के नबी का कॉल, सबसे अफजल अमल कौन सा है? नमाज अपने वक्त पे अदा करना। सही मुस्लिम की रिवायत 252 है। तो नमाज को मुश्किल ना करें। फिर और क्या है? नमाज रब की रहमत की बारिश है, जिस पर भी बरस जाए, जिनके दिल पाक होते हैं, जिनकी अक्लें सलीम होती हैं, जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, जो उनस और मुलाकात के शौक़ में अल्लाह की तरफ आते हैं, तो नमाज उनको दो आलम से बेगाना कर देती है। इसीलिए सहाबा कराम में किसी की पुश्त में तीर घुस गया जंग के दौरान, और हालत नमाज में जब निकाला तो उनको पता भी ना चला। और जब इंसान हकीकी ईमान का मज़ा चख लेता है ना, तो उसके लिए नमाज सिर्फ फिर इबादत और इताअत नहीं रह जाती। ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जिस्म के साथ कुछ चीज़ें दोहराने का नाम नहीं, बल्कि इसमें लज्जत है और इसमें सुरूर है, और इंसान उस वक्त अपने आप को दूसरों से बेनियाज करता है। आप पता है कि नबी सल्लम कैसे नमाज का इंतज़ार करते थे? जैसे प्यास से बेहाल शख्स सहरा में पानी की तलब रखता है। आप हज़रत बिलाल से कहा करते थे कि कुम या बिलाल, खड़े हो जाओ ए बिलाल, फरहना बिस्सला, फिर हमें नमाज के ज़रिए ठंडक पहुँचाएँ। अबू दाऊद की रिवायत है 4986। आप और मैं अपने आप से सवाल करें, क्या हमें भी नमाज में ठंडक मिलती है? आपने फरमाया, जुइलत कुर्रतु अईनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। मुस्नद अहमद 14083 और निसाई 3391। क्या मेरी आपकी भी आंखों की ठंडक नमाज में है? और नमाज की खूबी देखिए, यह सिर्फ नबी सल्लम ने नहीं पढ़ी, पिछले अंबिया भी। मसलन हज़रत इब्राहिम की दुआ कुरान पाक सूरत इब्राहिम 40 में क्या पढ़ते हैं? रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, के अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा। हज़रत इस्माइल का जिक्र कुरान पाक में क्या आता है? सूरत मरियम 55। ज़बीहुल्लाह, इतना प्यारा नबी, और अल्लाह ने उनकी तारीफ़ क्या की, किसी को याद है? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, या अमुरु बिस्सलात। और हज़रत मूसा ने जब अल्लाह से पहला कलाम किया तो क्या कहा अल्लाह ने उनको भी? हुक्म किसका दिया? अकीम सलात अली ज़िक्री, नमाज का हुक्म, सूरत तौहा 14। लुकमान अलैहि सलाम का जिक्र है कुरान में, बेटे को वसीयत की तो क्या कहा? या बुनैया अकीम सला, नमाज कायम करो, सूरह लुकमान 17। हज़रत ईसा माँ के गोद से बोले गहवारे में तो क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वल हिक्मा, और क्या कहा? औसानी बिस्सला, सूरत मरियम 31 में है। और नबी सल्लम रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने खुद नमाज का हुक्म दिया, किधर? अनकबूत 45 में। और कामयाब होने वालों की पहली और आखिरी सिफत क्या है? सूरत मोमिनून के शुरू की आयतों में, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, और आखिर में क्या आता है? युहाफिज़ून। तो क्या पता चला कि नमाज अहम है, और नमाज वो दौलत है जिसकी हिफाजत करनी चाहिए। सूरत बकरा 238, क्या कहा अल्लाह ने? हाफिज़ु अलस सलावात। मैं आपसे पूछूं, हम किस चीज़ की हिफाजत करते हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी सिक्योर करके हमने लॉकर्स में रखी हुई हैं, जिसको कीमती समझते हैं? तो अल्लाह कहते हैं जैसे सोने चांदी की हिफाजत करते हो वैसे नमाजों की भी हिफाजत करो। एक सवाल खुद से पूछिए, करती हूँ, होती है हमारे से हिफाजत? एक मेहमान हमारी नमाजें चोरी तो नहीं कर जाता, एक फ़ोन कॉल मेरी नमाज तो नहीं खा जाती मग़रिब की, और इसी तरह की बाकी बातें। कितनी शादियाँ और कितनी शॉपिंग्स हमारी नमाजों को खा गई। और एक शादी की तैयारी, एक बच्चे की शादी की तैयारी, आप ज़रा उसको जहन में लाएं। और नमाज की एक और ख़ूबी लिखिए, सारा दीन सारी शरीयत ज़मीन पे दी गई, और नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए अल्लाह ने नबी सल्लम को आसमानों पे बुलाया। नमाज का मर्तबा बुलंद है, तिर्मिज़ी 385। और एक दिन में बार बार नमाज पढ़ना गुनाहों के मैल कुचैल को ऐसे साफ़ करता है जैसे किसी के घर के बाहर पानी की नदी हो और वो उसमें नहा ले। ये बुखारी की रिवायत 528 और मुस्लिम 1522 में मिलता है। हम सब से दिन रात गलतियाँ होती हैं, 5 बार गलतियाँ माफ़ करवाने का ज़रिया नमाज है। अंदर ख्वाहिशात और गफलतें हैं, इसको मारने का ज़रिया नमाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का एक फ़रिश्ता हर मौके पे नमाज के लिए निदा देता है कि बनी आदम उठो, अपनी इस आग की तरफ जिसे तुमने सुलगा लिया इसको बुझा लो। तबरानी की रिवायत है। और फरमाया बंदा मुस्लिम जब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज़ पढ़ता है तो इसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है ये, 21889, और सूरत हूद 114। आपने एक दरख्त के पत्ते हिला के दिखाए और पत्ते गिरने लगे तो आपने कहा कैसे नमाजी के गुनाह गिर जाते हैं। अल्लाह करे कि मेरे लिए नमाज, आपके लिए नमाज इतनी ही कीमती और इतनी ही आला हो जाए, उस वक्त आप सब चीज़ों से अलग हो जाएं। देखिए हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे ना, हुक्म क्या, फ़र्ज़ क्या, मसनून क्या, ये किताबी बातें हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से नमाज़ पढ़ी हमने वैसे पढ़नी है, लेकिन अगर अंदर रूहानियत नहीं है, आपकी मेरी नमाज़ें ऐसी हों, मसलन आप देखिए कि आप अपनी दोस्त के साथ बैठी हैं, वो बातें कर रही है और आप फ़ोन से खेल रहे हैं, आपसे वो कुछ पूछ रही है और आप इधर उधर देख रहे हैं, किसी भी रिश्ते में आप ये बर्दाश्त करते हैं? आप कहते पहले मेरी बात सुने। अच्छा मैं नहीं बोलती, जब आप चुप होंगे तो बोलूँगी, कहते हैं ना। तो नमाज के दौरान हमारा क्या हाल होता है? जो भूली बिसरी बातें याद आने लगती हैं। और नमाज के लिए फातिहा के लफ्ज़ को अल्लाह ने कहा, कसम तो सला तो बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदों के बीच में डाल दिया। ये जो सूरत फातिहा नमाज का हिस्सा है ना, उसमें भी हिकमत है। क्यों नहीं कि ला सलाता इल्ला लिमल्लम यक्रा बि फातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। उसकी वजह यह है कि ये कॉन्वर्सेशन है, लाइव चैटिंग चल रही होती है, वॉइस कॉल चल रही होती है। क्यों कहा कि ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, जिसको आप वीडियो कॉल कह लीजिए, फेस टाइम कह लीजिए, और तुम नहीं देख रहे तो वो तो देख रहा है, कभी अगला आपको देख सकता है, आप उसको नहीं देख सकते। आप आज की सारी टेक्नोलॉजी को सामने रख कर बताएं कौन सी कॉल अच्छी है, किसके ज़रिए प्यारों को देखते सुनते रहते हैं। आवाज़ से बात काफ़ी नहीं, फेस टाइम खोलें, स्काइप पे आएँ, व्हाट्सएप पे आएँ, कभी नमाज में ये कैफियत लाए। सच बताएं, रोने का मुकाम है क्या हमारा अल्लाह को देखने का, अल्लाह के चेहरे पे नज़र डालने का जज्बा इतना स्ट्रांग है कि कभी मूसा की तरह बेख्तियार बोल उठे कि अरे आप मुझे अपना आप दिखा, मैं तो तुझे देखना चाहता हूँ। हम पता नहीं वो कभी नमाज कभी हरम में कोई पढ़ी हो, कोई लैलतुल कदर की नमाज ऐसी हो तो हो, आम नमाजें तो हमारी ऐसी नहीं है। और जो हमारी नमाज है ना, ये हमारे ताल्लुक बिल्ला की चुगली खाती है। एक जुमला लिख लीजिए, अपने ताल्लुक बिल्ला को नमाजों के आईने में पहचानी है बस। और जब बंदा अल्लाह की तरफ मुंह करता है, अल्लाह ताला दूसरी तरफ मुंह नहीं फेरता जब तक कि बंदा खुद ना फिर जाए। इब्ने माजा की एक बहुत प्यारी रिवायत है, खुलासा है, और रिवायत का नंबर है 1222। 3 दफ़ा 2 लिख लीजिए कि बंदा जब नमाज में होता है ना तो अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है और उससे नहीं फिरता यहाँ तक कि वो खुद ना फिर जाए या उसका वुजू ना टूट जाए। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कहा गया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, सूरत अल अराफ 31। हर नमाज से पहले जीनत ले लिया करो, यानी बरहना ना पढ़ो जैसे कि मक्का के लोग करने लग गए थे। साफ़ सुथरे कपड़े पहनो नमाज के लिए, इबादत के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करने के लिए। सफाई, तहारत, मिसवाक, खुशबू और अच्छे कपड़ों का अहतमाम करना चाहिए। ये एक मुसलमान की उस नमाज से और उस इबादत से मोहब्बत की अलामत है। निसाई की रिवायत नंबर 5 भी है। और आखिरी बात करके आगे चलती हूँ कि अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है, मुस्लिम 265, तो आपको मुझे अगर अपनी रूहानियत कम दिखे, स्पिरिचुअली इफ़ वी आर वीक, इफ़ वी आर डाउन, इफ़ वी आर डिप्रेस्ड, तो हमें नमाज में खड़े होना चाहिए। अल्लाह के नबी को जब कोई मामला मुश्किल लगता, नमाज की तरफ भागते। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, एक ईमान वाला तो सारे लोगों की शिकायतें अल्लाह को लगाता है। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, सारे शिकवे शिकायतें अल्लाह के लिए है। कितनी हैरत की बात है, दिन में 5 बार उसको दुख सुख सुना कर भी ढूंढते हैं और कहते हैं अब किसको सुनाएं। माँ पास नहीं है, शौहर पास नहीं है, बच्चे पास नहीं है, और ये नहीं और वो नहीं है। और आपने वो हदीस सुनी होगी बुखारी की, आप जाकर ख़ुद नोट करें अगर आपके घर में बुखारी है, 1142, कि रात को जब बंदा सोता है तो शैतान उसके बालों में गिरे लगाता है नोट्स, और हर नोट खुलती है नमाज के साथ। सुनी हुई है ना हदीस, हंड्रेड्स टाइम तो मैंने खुद कोट की हुई है पिछले सालों में, और आपने कहीं औरों से भी सुनी होगी। ये नमाज गिरहें खोलती है शैतान से। अगर जो नमाज नहीं पढ़ता ना, याद रखिए, जिसको भी आप हिदायत से दूर देखेंगे, गुस्से में चिड़चिड़ा, उसकी वजह यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ता। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद कुदरती तौर पर दिल खुश होगा। और कभी देखा करें जो फजर की नमाज जमात से पढ़ कर गुनगुनाते घर आते हैं, ऐसे लगता है चकी चीज से होकर आए, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस फन प्लेक्स से होकर आए। जो खुशी, जो कुरान की तिलावत, जो ताजगी, और जो फजर के लिए एक दफ़ा घर से निकल जाए मस्जिद में, सारा दिन उसका प्रोडक्टिव होगा, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी नमाजें बेहतर से बेहतरीन पर ढल जाएं, खूबसूरत से खूबसूरती की तरफ चलने लगें। नमाज इज़ नेविगेटर, बिल्कुल आपके दिन के 5 वक्त की नमाजें, इट्स योर वर्किंग मैनुअल, इस नमाज से उस नमाज तक। और बल्कि मैं सोचती हूँ कि नमाज जो है ना, ये आपका एक ब्रेक है। सारा दिन आप दुनिया में भाग रहे हैं, उसके पीछे उसके पीछे, इधर उधर, बस अब मुझे सुकून से नमाज पढ़ने दो। और वाकई कुछ खवातीन तो इतनी बिजी होती हैं, अगर नमाज ना बेचारी पढ़े तो सारा दिन खड़ी रहें और चूल्हे में खाना बनाती रहें और काम करती रहें। तो नमाज इज़ योर पर्सनल टाइम, अपने बच्चों को बता दें, फोन्स को बंद कर दीजिए, घर में कोई भी उसको बता दें, इट्स माई ब्रेक टाइम नाउ। घर का एक ऐसा मखसूस हिस्सा जहाँ आप जाएं तो आपको मज़ा आने लगे, कोई डिस्ट्रैक्शन आगे ना कुछ ना हो, तो आप वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ कर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब बहुत सारे लाउंजेज हैं हमारे घर में, तो सला लाउंज क्यों नहीं, ये लग बात है कि हम हर जगह पढ़ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि सिर्फ एक ही जगह पे सब पढ़ें, लेकिन कोई ऐसी जगह ज़रूर हो कि जहाँ आप थोड़ी देर जाकर उस स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे फ़ायदा होगा। और याद रखिए कि नमाज छोड़ने वाला कारून और फिरौन लोगों के बीच में होगा। अल्लाह के नबी की इतनी मतलब डरा देने वाली रिवायतें हैं कि बेनमाजी का हशर कयामत के दिन कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हमान के साथ होगा, उबई बिन हल्फ के साथ होगा। और आपने फरमाया जिसकी नमाज फौत हो गई, कौन सी, असर की, तो गोया कि उसके माल और अहलो याल सब फौत हो गए। ये मुस्लिम की रिवायत है 1417। इतना बड़ा नुकसान, और जिनकी सारी जा रही हैं। क्या कहा सूरत माउन आयत 4 और 5 में, वैलुल्लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, सहव हासिल करने वाले, यानी भूले में पता ही कोई नहीं, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस बर्बादी से और हलाकत से बचा दे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक वादा किया था खुद से, क्या, कि मैं मरते दम तक नमाज पढ़ूंगा, क्या, वाउसानी बिस्सलाती वज़्ज़कती मा दुमतु हय्या। तो नमाज मरते दम तक है, याद रखिए, ज़िंदगी जा रही है आपके हाथों से। अल्लाह के नबी ने अपने अमल से करके दिखा दिया कि अस्सलातु वमा मलकत अईमानुकुम। और क़्यामत के दिन पहली चीज़ नमाज है। तबरानी कबीर की रिवायत है 1254, कि जिसकी नमाज ठीक होगी उसके बाकी अमल भी ठीक होंगे, और अगर शुरू में नमाज ही ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त नहीं होंगे। और नमाज मोमिन की मेराज है, तिर्मिज़ी 213। और 50 नमाजों का अजर मिलता है आपको 5 नमाजों पे, क्यों, कि अल्लाह ने कह दिया कि जब एक के बदले में 10 है, बुखारी की रिवायत 349 है। तो अब ये तो था ज़रा सा नमाज का रूहानी पहलू, इस्लाम में नमाज कहाँ है और उसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया गया, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि नमाज का हुक्म क्या है, क्या आप और मैं इस नमाज को डिले कर सकते हैं, तो पहली बात है कि नमाज फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं। इतने हवाले हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसमें तीन चार बोल देती हूँ, जो मर्ज़ी लिख लीजिए। सूरत अनकबूत 45, अंबिया 73, बकरा 43, बुखारी 1090, मुस्लिम 1570, अबू दाऊद 495, और इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। नमाज़ फ़र्ज़ है। इसकी फजीलत क्या है? चंद रिवायात के नंबर आपको दिए हुए हैं, सिर्फ मैं क्विकली वो हदीस बोल दूंगी। इसमें कुछ तो पहले भी बात कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। नंबर एक, नमाज नूर है, मुस्लिम 534। नमाज से गुनाह झड़ते हैं, मुस्तद अहमद 179, जिल्द 5 है। नमाज गुनाहों को मिटाती है, मुस्लिम 550। पिछले गुनाहों का कफारा है, मुस्लिम 543, बुखारी 528। गुनाहों की आग नमाज से बुझती है, सही तरगीब। नमाज से गुनाह सर पर से गिरा दिए जाते हैं, सही तरगीब 362। नमाज से दरजात बुलंद होते हैं, मुस्लिम 1093। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी, निसाई 3391। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, निसाई 468। नमाज की पाबंदी करने वाला शोहदा के साथ होगा, सही तरगीब 361। नमाजी के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, बुखारी 659। फजर और असर की नमाज पढ़ने वाला दोजख में हरगिज़ नहीं जाएगा, सही मुस्लिम 1436। जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी, तो गोया कि उसने सारी रात क़याम किया, मुस्लिम 1491। और नबी सल्लम ने कहा, उस शख्स के लिए रहमत की दुआ है जो असर से पहले चार रकतें पढ़े, अबू दाऊद 1271। फजर से पहले दो रकत पढ़ना दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे बेहतर है, मुस्लिम 1688। और जिसने खालिस अल्लाह के लिए 40 दिन जमात से नमाज पढ़ी, तकबीरे उला पाता रहा। कौन सी होती है? पहली तकबीर अल्लाह अकबर, जिसको तकबीरे तहरीमा भी कहते हैं, यानी उसके बाद बाकी काम हराम हो जाते हैं। मतलब मुराद ये कि शुरू वक्त से ही नमाज में शामिल था, क्लास के आगाज़ से ही बैठा हुआ था, ये कह लीजिए। तो फरमाए 40 दिन कोई कर ले तो दोजख और निफाक से बरी, यानी उसकी निजात लिखी जाती है, तिर्मिज़ी 241। मस्जिद में अपनी नमाज पूरी करके इसका कुछ हिस्सा अपने घर में पढ़ने वाला, इससे अल्लाह ताला उसकी नमाज में बरकत अता करता है, मुस्लिम 1822। और जो शख्स सुबह की नमाज अदा करता है, वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है, ज़िम्मा समझते हैं, सिक्योरिटी में इंश्योर्ड हो जाता है वो, 1493, सही मुस्लिम की रिवायत है। और जो रोज़ 12 रकत फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नफल में से पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं, सही मुस्लिम 1696। जो शख्स 4 रकतें जोहर से पहले और 4 रकतें जोहर के बाद पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला इस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं, मुस्लिम अहमद अबू दाऊद निसाई और तरगीब 584। जो बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है, अल्लाह उसके बदले में एक नेकी लिखता है और एक गुना माफ़ करता है, एक दर्जा बुलंद करता है, इब्ने माजा सही तरगीब 386। तो इतनी तो आपके हाथों में ताकत ही नहीं है कि आप सारी हदीसें लिख सकें, इतनी फजीलत है। सवाल पैदा होता है कि हम अपनी नमाजों को देखें। इसके बाद अगर आप और मैं ज़रा सा अपना इल्म नमाजों के लिए लें, मैं बोलती हूँ सवाल, आप सब ऊंची आवाज़ से जवाब देंगे, फ़र्ज़ नमाजें कौन सी हैं? बच्चों वाला सवाल है, बोल दीजिए, 5 नमाजों के नाम लें। नमाजों की रकतें क्या? सिर्फ फ़र्ज़ बोलें शुरू से तरतीब से। शाबाश। सुन्नतें कितनी हैं? तरतीब से बोलिए। चले, जो आपने सबने बोली है वो मौकेदा है, जो सबने नहीं बोली वो गैर मौकेदा है। यानी ये देखिए, ये टर्म्स मुश्किल लगती है ना, लेकिन हम सब पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फजर की सुन्नतों की कोई ख़ास खूबी है? क्या खूबी है? नोट कर लीजिए, आपके ऐसे इधर नोट्स में नहीं है, लिख लीजिए, फ़ायदा होगा। फजर की सुन्नतें बहुत अहम है। नंबर एक, इनको तवील नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी नहीं पढ़ें, वरना क्या होगा, फजर के फ़र्ज़ निकल जाएंगे। ये मुस्लिम 169 नंबर है। पहली रकत में सूरत काफिरून और दूसरी में सूरह इख़लास पढ़नी चाहिए, मुस्लिम 1690। तीसरी बात यह है, यानी पहली क्या थी, तवील ना हो, दूसरी क्या है, सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, पढ़ते हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरा क्या है कि अगर फजर की सुन्नतें फ़र्ज़ या जमात से पहले ना पढ़ सकें तो तुलुए आफ्ताब से पहले पढ़ सकते हैं, यानी वैसे आम हालात में फ़र्ज़ों के बाद नमाज नहीं है ममनू वक्तों में, लेकिन सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, तिरमिज़ी 422। फिर इसी तरह तुलुए आफ्ताब तक भी ना पढ़ सकें तो क्या करें, सूरज निकलने के बाद पढ़ लीजिए, तिरमिज़ी 423। छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, छूट गई है, दिन में किसी वक्त भी उनको अदा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगली चीज़ क्या है, नमाज के औकात क्या हैं। आप में से किसको पता है नमाज के औकात का शरई हुक्म, मतलब एक ये तो हम सबको पता है, वो कैलेंडर में देख के बताते हैं, आजकल तो ये आसान हो गया, चले जी वो फलां ऐप का नाम लिख देते हैं, वहां से जाकर देख लीजिए, लेकिन आप ये सारा पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर आपको एक और बुक पढ़ाएंगे नए कोर्सेज में, जिसमें आप मज़ीद इन डेप्थ नमाज को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर एक, नमाज वक्त की पाबंदी। मैं चंद रैंडम बातें बोल देती हूँ जो औकात से मुतल्लिक हो सकती हैं, और जिसमें, और वो क्या है कि वक्त की पाबंदी से पढ़ने का हुक्म है। सूरह निसा 103 में आता है, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। फिर वक्त की हिफाजत भी करनी चाहिए, सूरह बकरा 238। और वक्त पे नमाज पढ़ना वाजिब है, सही मुस्लिम 1465। बेवक्त वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वेले दी नमाज, कवेले दियाँ टकरा, और इतना इल्म है इसके बस है। कवेला क्या होता है, वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें। वैसे तो हमारी वक्त पे भी टकरें ही होती हैं, क्योंकि हमने जाना होता है फ़ौरन उसके बाद कहीं ना कहीं, लेकिन नमाज वक्त पे और अच्छे तरीके से। और इस पे आपको मैं कुछ काम देना चाह रही हूँ, बेसिकली किताबु सलात का कुछ हिस्सा इनके साथ पीडीएफ या उसका पिक्चर शेयर कर दें। इन सवालों का जवाब आपने खुद लिखना है। नंबर एक, क्या नमाज़ों के औकात के, उसमें आपको पूरे वो हदीसें बयान की गई हैं कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए थे, 2 दिन आते रहे बैतुल्ला के पास और आपकी इमामत करते रहे, पहले दिन नमाजों के इब्तदाई वक्त में और दूसरे दिन इंतहाई वक्त में पढ़ा कर कहा कि आपकी उम्मत के लिए वक्त इन दोनों के बीच का है। हमें शरण पता होना चाहिए, कभी घड़ी ना हो फिर क्या करेंगे। आप कहते हैं कि सूरज से और साए के साथ है, स्टिक लेकर खड़े हो जाइए और इसको जाके गाड़ दें, जूं ही साया बराबर हुआ जोहर का टाइम शुरू हो गया, जूं ही स्टिक अगर 1 फुट की है और ज़मीन पे 2 फुट की हो गई तो असर का वक्त शुरू हो गया। ये यूनिवर्सल वॉच है, अब आज गैजेट है, हर एक के पास अभी भी नहीं है ऐप्स वगैरह, तो जंगलों में, सहराओं में नमाजों के वक्त देखने के ये सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद आप देखिए अजान और इकामत नमाज के साथ है। अजान क्या है, नमाज के वक्त की आगाही, अजान देना मशरू है। और इसी तरह से आप देखिए कि जब अजान दी जाती है तो उसमें किस चीज़ का इजहार होता है कि अब तुम्हें सबसे बड़ी हस्ती ने बुला लिया, और अजान सुनते वक्त सर पे दुपट्टा ज़रूर लेना चाहिए, और घर से बाहर जाते हुए और गैर मर्दों में जाते हुए। चले, काफ़ी नॉलेज वाले हो गए माशाल्लाह। हाँ जी, और एक वक्त पे भी मैंने देखा है, शादियों में गए हुए बेचारे खूब पने बने, और जूं ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं और बेचारे कुछ होश वो माइक पे ले लें, टिश्यू पेपर पकड़ के सरों पे रख दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब वो ख़त्म होता है तो ऐसे बड़ी अदा से सर हिलाती हैं, उड़ जाता है। तो ये एक तकल्लुफ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इस हीट में जो लफ्ज़ मैं अभी नहीं बोल रही उसका मतलब यह है कि आपने खुद लिखना है। कहाँ से देख कर लिखना है, किताबुल सलात में से लिखना है। इसमें आपने पूरी अजान लिखनी है, मेरा दिल कह रहा था आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से अजान लिखें और उसको महसूस करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अजान की इब्तिदा कहाँ से हुई थी, जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, शुरू में नहीं थी, किसी ने कहा घंटी बजा दी जाए, जैसे नसारा का एक घंटा सा बजता है, कुछ ने कहा बिगल बजा दें यहूद की तरह, तो ये इब्ने उमर की रिवायत है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने इन दोनों तरीक़ों को नहीं पसंद किया, और हज़रत उमर ने कहा ऐसा करते हैं, एक आदमी को जाकर शहर में जहाँ लोग होते थे वहाँ भेजते, और वो लोगों को कहें आओ नमाज़ पढ़ो। इब्तदा में ऐसे थी, फिर आपने हज़रत बिलाल को भेजा उमर की इस राय पे, और उन्होंने बाज़ार में जाकर लोगों को आवाज़ लगाई, कोई अजान के लफ्ज़ नहीं थे शुरू में, बस ऐसे ही था आवाज़ लगा दो। हज़रत बिलाल कहते थे जब लोग जमा होते थे तो अल्लाह के नबी उनको कहते कि ए बिलाल उठो और नमाज के लिए अजान दो। ये बुखारी की रिवायत है 604। क्या पता चला कि ये इब्तदाई मराहिल से गुजरती गई, लेकिन ख्वाब में अल्लाह ताला ने फिर एक सहाबी को नमाज के अल्फाज सुनवाए थे, और वो जब उन्होंने आकर बयान किए तो उसके बाद फिर वही तरीका हो गया जी। और वो शख्स कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या अजान देना फ़र्ज़ है? ये भी एक क्वेश्चन है। क्या आबादियों में इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं अजान देना फ़र्ज़ है? ये उनका मजमा फतावा है, 67-68 फतवे का नंबर है, नोट कर लीजिए। लेकिन यह है कि मस्जिदों में तो अजान होनी चाहिए। आपने एक शख्स को यमन में भेजा था, कहा जब नमाज का वक्त हो तो एक शख्स अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए। बुखारी 628 है। फिर इसी तरह से अजान के अल्फाज आपने खुद लिखने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपने दी नहीं, हम तो नहीं दे सकते। क्या औरत अजान दे सकती है? औरत नहीं दे सकती। औरत इमामत कर सकती है, खुतबा जुमा दे सकती है, इसकी हिकमत क्या है? फिर ये काम भी मस्जिदों में औरतें ही कर रही होती हैं और मर्द आराम फरमाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने मस्जिद से औरत को फारिग करके कितना बड़ा एहसान किया, राइट? लेकिन बहरहाल ये है, अजान सुनने वाला क्या करे? लिख लीजिए, नंबर एक, अल्फाज को दोहराए, सही बुखारी 611। फिर जहाँ हैया अल सलाह और हैया अल फलाह के अल्फाज आएंगे तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहे, बुखारी 613। फिर एक मौज़िन का जवाब देंगे। अब बस कई मस्जिदों से अगर अजानें आ रही हैं तो सब का जवाब देना नहीं है, क्योंकि हदीस में तकरार नहीं है, ठीक है? और अजान के वक्त पे यानी एक दफ़ा कम अज़ कम खामोशी से सुन लेना चाहिए। ये बताइए कि अजान के बाद की दुआ आती है आपको? अजान के बाद की दुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद लिख कर लाएँ तो कौन कौन लिख लेगा? मैं सोच रही थी कि इस शीट के साथ आपकी उर्दू भी अच्छी हो रही है। ये भी एक क्वेश्चन है कि आप उर्दू पढ़नी आती है कि नहीं आती? तो बहरहाल ज़रा मिलके पढ़ेंगे या मैं साथ बोल दूँ? पढ़िए मिलके अजान के बाद की दुआ। जी बस लफ्ज़ यहाँ तक है, बुखारी 614 में वतलो। टीवी पे अक्सर जो आती है उसके आगे एक और इजाफा होता है, इन्ना का ला तुखलिफुल मियाद। वो किसी और हदीस में हो सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन याद रखिए किसी सही हदीस से अजान के बाद मुअज्जिन का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह और इस किस्म के कोई और लफ्ज़ पढ़ना ये साबित नहीं है, ठीक है? फिर इसके बाद ये है, गुनाह होगा जी, बिल्कुल गुनाह होगा। पूछें किस बात का? क्योंकि अल्लाह के नबी और सहाबा ने नहीं पढ़ा। दीन वही है, जहाँ रोको रुक जाओ, जहाँ कहो चल पढ़ो, ठीक है? फिर इकामत जो होती है वो अजान के बाद दी जाती है और उसके बाद फिर नमाज होती है। इकामत में और अजान में क्या फ़र्क है? ये देखिए लफ्ज़ मेरे, तकरार का फ़र्क है। जो जुमले अजान में दो दफ़ा बोले जाते हैं वो इकामत में एक दफ़ा बोले जाते हैं। मकसद क्या है? कि वो जो वुजू में पानी ज़ाया कर रहे हैं वो जल्दी से आकर नमाज के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है? क्या इकामत का भी जवाब देना चाहिए? कद कामत इस्सला, कद कामत इस्सला के अल्फाज मिलते हैं कि वो आवाज़ आती है, जैसे मौज़िन के लिए अजान तो पूरी दोहराई जाती है लेकिन इकामत पीछे दोहराई नहीं जाती। क्या इकामत के बाद की भी कोई दुआ है? कोई दुआ नहीं है। ऐसे वक्त में सिर्फ बैठे खड़े रहेंगे, ठीक है?